हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन आज पहली बार आदित्य किसी लड़की को इस तरह देख रहा था, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ अपने दिल की वजह से। और अपने दादाजी की खुशी के लिए आदित्य हर हफ्ते किसी न किसी नई लड़की से मिला करता था, लेकिन कभी कोई उसके दिल में जगह नहीं बना पाई थी। मगर झलक कुछ अलग थी। जिस दिन उसने पहली बार उसे देखा था, उसी पल कुछ बदल गया था। ऊपर से जिस तरह उसने सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया था, और आदित्य के पावर, स्टेटस या नाम से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, यही बातें उसे उसकी ओर अट्रैक्ट कर गई थीं। हालांकि जिस तरह उसने उसकी बेइज्जती की थी, वो बात उसे थोड़ा अजीब भी लगती थी। फिर भी न जाने क्यों, वो उसे नाराज होकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा था। फिलहाल काफी देर तक झलक नहीं जगी। पूरे 40 मिनट हो चुके थे तभी दादाजी ने झलक को फोन करने का सोचा, क्योंकि वो समझ चुके थे अगर झलक खुद नहीं जगी तो आदित्य राणा पूरी रात उसे यूं ही देखते हुए बिता देगा, लेकिन उसे जगाएगा नहीं। ये बात सोचकर दादाजी के चेहरे पर हल्की सी खुशी भी आ गई थी। मगर वो आदित्य का वक्त इस तरह बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत झलक को फोन मिला दिया। झलक का फोन वाइब्रेट मोड पर था। जैसे ही फोन वाइब्रेट हुआ, वो हल्की सी चौंक कर जाग गई। उसने खुद को गाड़ी में पाया और सामने आदित्य को बैठे देखा। उधर आदित्य को अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा आया, आखिर किसने उसे फोन कर दिया, बेचारी की नींद टूट गई। लेकिन झलक ने तुरंत फोन उठाकर कान से लगा लिया। हाँ दादाजी, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। फिर उसने आदित्य की ओर मुड़कर पूछा, और कितना वक्त लगेगा हमें घर पहुंचने में? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, हम तो 40 मिनट पहले ही मल्होत्रा मेंशन पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही झलक ने झट से खिड़की से बाहर देखा। सच में गाड़ी मेंशन के सामने खड़ी थी। अगले ही पल उसने आदित्य की ओर देखा, लेकिन कुछ बोले बिना तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर की ओर बढ़ गई। आदित्य हल्का सा रूठ कर बुदगुदाया, इतना रूखा होने की क्या जरूरत थी, एक नॉर्मल बाय तो बोल सकती थी, कितनी रूढ़ है ये। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। उधर झलक भी मेंशन के गेट पर रुककर कुछ पल तक जाती हुई गाड़ी को देखती रही। मन ही मन वो धीरे से बोली, इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो सीधी मल्होत्रा मेंशन के अंदर चली गई। हाल में स्नेहा जी, रोहन, आरव और सौरभ जी सब एक साथ बैठे हुए थे। दादाजी बालकनी में कोई जरूरी काम निपटा रहे थे। जैसे ही वो काम खत्म हुआ, वो भी हाल में आ गए। झलक आकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। स्नेहा जी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, बहुत थकी थकी लग रही हो, तुमने खुद को काम में कितना ज्यादा झोंक दिया है, अब तो लगभग 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए, तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पावर, पैसा, पोजीशन, हर चीज में तुम बेहतर बन गई हो, लेकिन अपने आप को भी वक्त दो, देखो खुद को क्या बना लिया है तुमने, ऐसा लगने लगा है जैसे तुम कोई काम करने वाली मशीन बन गई हो, आजकल रोबोट भी इतने परफेक्ट नहीं होते, बेटा अपना ध्यान रखा करो थोड़ा सा। स्नेहा ने पूरी माँ वाली फिक्र के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रोहन को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है ना, स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता? अचानक इतने सवाल सुनकर रोहन पहले तो चौंका, फिर खुशी से बोला, दीदी आपको पता है मेरा नया स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ हमें बड़ी सी टीवी पर पढ़ाते हैं, टीचर वीडियो दिखाकर समझाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स भी होते हैं, और पता है कल हमें घूमने भी लेकर जाने वाले हैं, आप नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ, थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में करवाया। रोहन की बातें सुनकर झलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई हो। वहीं अनामिका गहरी नजरों से झलक को देख रही थी। फिर वो उसके पास आई और उसका हाथ थपथपाकर बोली, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, झलक तुम्हें थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगने लगा है कि मुस्कुराना और हंसना तुम भूल ही चुकी हो। मैं जानती हूँ कि जिंदगी ने तुम्हें बहुत कड़े इम्तिहान दिए हैं, लेकिन जो उनसे लड़कर जीत जाए वही तो हमारी झलक है। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, झलक ने एक नज़र सबकी ओर देखा, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ जी भी आगे बढ़े और बोले, बेटा तुम्हारी बहन जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, अब तो सब कुछ है हमारे पास, अब तुम्हें बिल्कुल खुश रहना चाहिए, हम लोग सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन दादाजी चुपचाप गहरी नजरों से सिर्फ झलक को देखे जा रहे थे। अचानक झलक ने सबको देखा और थोड़ा तेज स्वर में बोली, हो क्या गया है आप लोगों को, क्या आपको मैं दिखाई नहीं देती? मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? या फिर किसी आदमी के आने से ही मेरी जिंदगी में खुशी आएगी? उसके आवाज में दबा हुआ आक्रोश साफ छलक रहा था। देखिए, अगर आप लोग ये बेकार की कोशिशें करना चाहते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी जिंदगी में कभी कोई आदमी नहीं आएगा। मुझे अपनी जिंदगी में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं किसी आदमी के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, लेकिन किसी आदमी के बिना खुश जरूर रह सकती हूँ। तो प्लीज आप सब लोग ये फालतू बातें करना बंद कर दीजिए, मैं खुश हूँ और बिल्कुल परफेक्ट हूँ। जैसे ही झलक ने एकदम से इस तरह की बातें कही, पूरा हाल शांत हो गया। अनामिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ झलक, हम तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। ये सुनते ही झलक ने अनामिका को गले लगा लिया और धीमे स्वर में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं माँ के साथ खुश हूँ, दादाजी के साथ खुश हूँ, पापा के साथ खुश हूँ, सौरभ पापा के साथ खुश हूँ, रोहन के साथ खुश हूँ। क्या ये सब काफी नहीं है? क्या जरूरी है कि मुझे किसी और आदमी की जरूरत पड़े? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप सब मेरे बारे में मत सोचिए, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ पल रुक कर वो बोली, मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो खुद को साबित करने के लिए कर रही हूँ। मेहनत से वो सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ जो मैंने खोया है, और मैं करके रहूंगी। एक बार मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, उसके बाद आप सब देखना मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता चमक रही थी। सभी लोग शांत हो गए। तभी दिग्विजय जी माहौल हल्का करने के लिए बोले, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अगर हमारी पोती नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई आए तो कोई नहीं आएगा, और कोई उसे इस बात के लिए परेशान भी नहीं करेगा। चलो अब फटाफट कुछ खाते पीते हैं, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, आज हम पूरा परिवार साथ में मूवी देखेंगे। रोहन उछल पड़ा, सच में दादाजी? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मूवी हमारी पसंद की चलेगी, कोई स्पाइडरमैन वाली मूवी नहीं चलेगी, ठीक है? पहले सब खाना खाएंगे फिर मूवी लगेगी। बेटा तुम जाओ फटाफट पॉपकॉर्न का इंतजाम करो, आज मजा आएगा, हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अनामिका ने आंखें तरेरते हुए मजाक में कहा, वाह दादाजी, आजकल तो आप बड़ी मूवी वूवी की बातें कर रहे हैं। याद है जब मैं आपको मूवी देखने के लिए कहती थी तब आप कैसे लेक्चर दे देते थे कि मूवी देखकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए? और जब से आपकी लाडली पोती आई है तब से आप खुद उसके साथ मूवी एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से हमें लंच पर ले जाकर फास्ट फूड भी खिलाया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो ठीक नहीं होगा। सब हंस पड़े।
दादाजी ने तुरंत अनामिका को गले लगाकर कहा, अरे मेरी शेर बेटा, तुझे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि रोहन पीछे पड़ा हुआ था मूवी के लिए, सोचा चलो सब बच्चे मिलकर देख लेंगे। और हाँ, आज तो मेरी लाडली अनामिका की पसंद की मूवी ही चलेगी। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई, लेकिन आरव जी ये सारा दृश्य चुपचाप देख रहे थे। मन ही मन बोले, क्या क्या मिस कर दिया मैंने, अपने बच्चों की खुशियाँ, उन्हें बड़ा होते देखना, सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से बर्बाद हो गया। ये सोचकर उन्होंने आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। झलक ने उनके चेहरे का भाव पढ़ लिया था, वो समझ चुकी थी कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। उसने मन ही मन ठान लिया, बहुत जल्द उन्हें उनके किए का एहसास भी होगा और उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी शांति छा गई। फिर वो अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुई और वापस आकर परिवार के साथ समय बिताने लगी। सबने मिलकर हंसी खुशी मूवी देखी, खाना खाया और एक अच्छा वक्त साथ गुजारा। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना बिल्कुल तय समय पर तैयार होकर आकांक्षा को लेने पहुंच चुका था। वो उसे शहर के सबसे शानदार वीआईपी मॉल में ले गया। मॉल के अंदर पहुंचते ही वो उसे सीधे एक लग्जरी बुटीक में ले गया, जहां ड्रेस की शुरुआती कीमत ही 2 लाख रुपए से शुरू हो रही थी। सिद्धार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक महंगे से महंगी ड्रेस सिलेक्ट करनी शुरू कर दी। ये पैक कर दीजिए, और वो भी, हाँ ये वाली भी। आकांक्षा हैरान होकर उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। मॉल में काम करने वाले स्टाफ भी ये सारा नज़ारा देखकर फुसफुसा रहे थे। इतनी शॉपिंग तो शायद किसी सेलिब्रिटी ने भी एक साथ नहीं की होगी। सिद्धार्थ का अंदाज साफ कह रहा था, वो सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रहा था, वो एक संदेश दे रहा था।